SBS हिंदी। वेद जी नमस्कार, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
आपका बहुत बहुत सादर नमस्कार, आपका हार्दिक आभार, हृदय से आभारी हूँ आपने मुझे यहाँ अवसर दिया।
वेद जी, आप जाने माने लेखक, कवि, नाटककार, कुछ उपन्यास आए हुए हैं आपके, कुछ संस्मरण आए हुए हैं, आपने एक उल्टावाद लिखा है, तो आपका ये उल्टावाद क्या है?
जैसा इसके नाम से ही स्पष्ट है, ये उल्टावाद है। ये असल में पारंपरिक वाद नहीं है, ये समाज में जो व्याप्त कुरीतियां हैं, हम जो अपने चारों ओर देखते हैं और जो हमारे मन को अखड़ता है कि होता कुछ है, वास्तविकता कुछ होती है और लोग दिखाते कुछ हैं, तो ये भी एक वाद है, ये भी एक इज्म है। यानी जो व्यक्ति के मन में जो प्रवृत्तियाँ घर किए हुए होती हैं और उनके अनुसार जब वो अपना जीवन संचालित करता है, वो समाज में जाता है, समाज में उस तरह का व्यवहार करता है, तो एक वाद का रूप ले लेता है। तो इस तरह बहुत सी चीज़ें हैं जो समाज में होती कुछ हैं, दिखती कुछ हैं, उन्हीं सब को लेके मैंने ये वाद का जिक्र किया है, तो इस सब का नाम दिया है मैंने उल्टा वाद।
यानी होती कुछ हैं, दिखती कुछ हैं,
करते कुछ हैं,
तो एक तरह से ये व्यंग और कटाक्ष के की परिभाषाओं में जाएगा।
जी,
व्यंग और कटाक्ष की श्रेणी में जाएगा ये उल्टा वाद।
जी जी,
तो
मैं इसका एक उदाहरण दूं।
जी, मैं वही कहने जा रही थी।
जी, जैसे डॉक्टरवाद एक मैंने इसमें लिखा है, हमारे यहाँ भारत में कोई व्यक्ति को कुछ जुकाम भी हो जाए, चोट लग जाए या कुछ हो जाए, तो उसको सहानुभूति के लिए स्वाभाविक है मित्र आते हैं, तो मित्र आते ही नहीं है खाली, एक पूरी लिस्ट लाते हैं लंबी कि अच्छा देखो ये करो ये करो, मैं जब वो सन 48 में सन 47 में गिरा था तो मैंने ये दवाई लगाई थी, मैंने अभी रखी है आपके लिए, ये आप लगाओ। हर एक आदमी दवाई बताता है और इतनी दवाएं बताता है कि वो सैकड़ों हो जाती हैं, और व्यक्ति यदि उनको नोट करना शुरू करे तो एक पूरी पुस्तक बन जाए।
जी बिल्कुल, जानी पहचानी सी स्थिति है और ये सभी को ये महसूस होता है कि आप बस बीमार पड़े और आपको दुनिया भर की जो है ना इलाज आपके लिए
सामने आ जाए,
परिचित आपके मित्रगण लेकर हाजिर हो जाए।
अच्छा, पर इतना ही नहीं है, फिर आके पूछते हैं वो, आपने वो किया, मैंने बताया जो, वो कहे नहीं नहीं वो नहीं किया, मैं दूसरे दवाई ले, अच्छा वो क्या है वो मुझे बताओ, फिर वो उसको याद करने की कोशिश करेंगे, फिर और दूसरों को वो मतलब समझाएंगे बताएंगे कि देखो मैंने उनसे बताया वो ठीक हो गए, आप भी ये जबरदस्ती जरूर करो, नहीं तो आप ऊपर चले जाएंगे, भगवान की कृपा हो जाएगी।
कड़ी जो है एक जगह नहीं रुकती है, वो आगे बढ़ती ही
निरंतर बढ़ती है।
और तो आपकी ये जो पुस्तक है उल्टा वाद,
जी
किस तरह से आपका ये लिखने की जो प्रेरणा थी,
जी
ये कहाँ से आई?
असल में ना साहित्य समाज सापेक्ष होना चाहिए, यदि समाज से कटा हुआ साहित्य है तो बेकार साहित्य है, क्योंकि मैं सामाजिक प्राणी हूँ, समाज में रहता हूँ, आसपास में जो साहित्यकार जो कुछ देखता है, जो कुछ अनुभव करता है, अब ये इसमें ऐसी रोजमर्रा की चीजें हैं। अब जैसे मैंने डॉक्टरवाद का जिक्र किया,
जी
तो ये रोजमर्रा हमारे जीवन में ये प्रतिदिन घटित होता रहता है, सब कोई आएंगे तो ये आपके जीवन में सबके में अनुभव आया होगा कि कोई मित्र आया आपको दवाई बताई।
बिल्कुल,
इसी तरह हम जो भी चीज देखते हैं उसको लेखक कुछ पैनी दृष्टि से उसका अध्ययन करता है, उसको देखता है और उसको फिर साहित्य में व्यक्त करता है, ताकि समाज को उससे कुछ लाभ हो सके, उसके आगे आके उससे वो कुछ सीख सके और मन में उसके में साहित्य से कोई आनंद की अनुभूति भी हो, उसे कुछ शिक्षा भी मिले, उसे कुछ प्रेरणा भी मिले, ये सब मेरा उद्देश्य रहा है।
वेद जी, आपने डॉक्टरवाद की बात की है, तो उसकी कुछ पढ़ के बताएं उसके बारे
जी,
में।
जी, मुझे प्रसन्नता होगी, मैं आपको बहुत संक्षिप्त में उसमें से कुछ अंश सुनाता हूँ।
जी,
एक बार मैं स्कूटर से गिर गया। स्कूटर तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कार से गिरते ही नहीं हैं, गिर तो स्कूटर से सकते हैं, वैसे मैं गिरा साइकिल से था, परंतु साइकिल कहने से जरा अति निम्न वर्ग का आभास होता है, इसलिए स्कूटर से गिरा, चोट ज़्यादा नहीं लगी थी, इसलिए मैंने मित्रों को स्कूटर से ही गिरने की सूचना दी। अब मित्रों द्वारा सहानुभूति जताने का सिलसिला शुरू हुआ, करीबी मित्र तुरंत दौड़ कर आए, आते ही उन्होंने चोट लगने पर काम आने वाली बहुत सी दवाइयाँ और नुस्खे बताने शुरू कर दिए, दूध में हल्दी डाल कर पिएं, यह तेल लगाओ, वह मरहम लगाओ, ये करो वो मत करो। चोट के बाद क्योंकि मैं उठ नहीं सकता था, इसलिए बिस्तर पर लेटे लेटे बहुत सारे नुस्खे सुनता रहा, कुछ को तो दो तीन बार रट के याद करने की कोशिश की, कुछ ज़्यादा ही खास लगे तो क्योंकि वे मित्रों ने बड़ी गारंटी के साथ बताए थे, अतः उनको पत्नी से लिख लेने के लिए कह दिया। यूं तो शहर में काफ़ी मित्र थे, परंतु जैसे जैसे उनको पता चलता रहा वे अपनी सुविधा अनुसार आते रहे और अपने अपने अनुभूत यानी प्रयोग किए हुए नुस्खे बताते रहे। कुछ दूर और नज़दीक के रिश्तेदारों में ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने भी अपने अपने गिरने व चोट लगने के यानी एक्सीडेंट के अनुभव बताए, हड्डियां तोड़वाने के अनुभव, मामूली चोटों के अनुभव, गंभीर चोटों के अनुभव और साथ साथ में उनमें प्रयोग आने वाली ऐसी देसी विदेशी दवाएं, नुस्खे, मालिश, पहलवान जी, हड्डी जोड़ तोड़ का काम करने वाले आदि आदि सब के विषय में विस्तार से उन्होंने बताया।
क्या बात है जी।
ऐसा ही एक बार एक रेल यात्रा के दौरान हुआ। यात्रा करते समय एक व्यक्ति को अचानक पेट में दर्द अनुभव होने लगा। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने करहाना शुरू कर दिया। अब क्या था, लोग इकट्ठे हो गए और शुरू हो गए उसे दवाएं बताने, उसकी बीमारी का अनुमान लगाने। कोई पेट में गैस बता रहा था, कोई अपेंडिक्स जैसे गंभीर बीमारी बता रहा था, कोई उसे अत्यंत घातक बीमारी बताकर अपना महत्व सिद्ध करने पर तुल गया था। कुछ ने अपनी तरफ से कोई न कोई बीमारी निश्चित कर दी थी, साथ में दवाई भी। इन सब बातों से ये निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ हर एक आदमी में डॉक्टर की प्रवृत्ति विद्यमान रहती है। वह जन्म से ही दवाओं, नुस्खों, बीमारियों के बारे में जान लेते हैं। गिर जाने पर चोट लगते ही तुरंत फूंक मारने लगते हैं कि दर्द ठीक हो जाएगा। कई बार तो वे डॉक्टर को बीमारी बताने की बजाय दवाएँ बताने लगते हैं कि मुझे किस किस दवा से कब कब आराम हुआ, अतः आप यह दवाई ही लिख दें। या उन्हें कई बार डॉक्टर से ही ज़्यादा दवाएँ रटी हुई होती हैं, उनमें कुछ ऐसी होती हैं जो उच्चारण भेद के कारण अलग ही नाम ग्रहण कर लेती हैं, जो डॉक्टर नहीं समझ पाता है परंतु वे सामान्य जन को भली भांति याद होती हैं।
जी बिल्कुल, आपने ऐसे लग रहा है कि जैसे नब्ज पकड़ लेते हैं ना, ये वही बात हुई है।
जी।
बहुत सारे लोगों को ऐसे अनुभव हुए होंगे
जी।
कुछ और वादों के बारे में भी आपसे इसी तरह की बात करते रहेंगे और आपकी ही जुबानी सुनेंगे भी।
जी।
और अभी आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी।
आपका बहुत बहुत आभार, आपने यहाँ आमंत्रित किया, मैं बहुत आभारी हूँ, हृदय से आभारी, धन्यवाद।
आपके विचार हमें बताएं। SBS हिंदी को फेसबुक पर लाइक करें और @SBS हिंदी को ट्विटर पर फॉलो करें।